एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को तू ग्रहण कर, मेरे श्रोताओं को तेरे वचनों के द्वारा आशीषित कर पिता, मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि मैं तेरा वचन को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। आज हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर का ज्ञान के विषय में। आज का संवाद का शीर्षक है परमेश्वर का ज्ञान। आइए हम इसके विषय में सीखते हैं। परमेश्वर अनेक तरह से अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और हमको अपने संपर्क में लाना चाहता है। प्रकृति हमारी ज्ञानेंद्रियों से निरंतर वार्तालाप करती है। उसके हाथों की कारीगरी द्वारा परमेश्वर का प्रेम और महिमा खुले हुए दिल व दिमाग को प्रभावित करते हैं। प्रकृति की वस्तुओं द्वारा परमेश्वर के संदेशों को सुनने वाले कान सुन और समझ सकते हैं। हरे भरे खेत, ऊंचे पेड़, फूल और कलियां, सजल काले बादल, रिमझिम बरसता पानी, कल कल करती नदियां, आकाश के प्रभावशाली नक्षत्र हमारे दिलों से बातचीत करते हैं और हमें दावत देते हैं कि हम उस सृजनहार से परिचित हो जाएं जिसने समस्त विश्व की रचना की है। हमारे मुक्तिदाता ने अपने बहुमूल्य पाठ प्रकृति की वस्तुओं के साथ बांधे हुए हैं। पेड़, पक्षी, तराई के फूल, पहाड़, झील, सुंदर आकाश के साथ साथ दैनिक जीवन की घटनाएं और आसपास की वस्तुओं को सत्य के वचनों के साथ इस प्रकार से जोड़ा गया है कि इंसान के परिश्रम भरे व्यस्त जीवन के बीच भी उसके पाठ अक्सर याद आते रहें। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतानें उसके हाथों के कार्यों की सराहना करें और उस साधारण सुंदरता में आनंद प्राप्त करें जिससे उसने हमारे सांसारिक घर को सजाया है। हमारा परमेश्वर सुंदरता प्रेमी है और बाहरी आकर्षण से अधिक वह चरित्र की सुंदरता से प्रेम करता है। वह चाहता है कि हम फूलों की सुंदरता और कोमल सरलता की तरह अपने चरित्र में पवित्रता और कोमलता का विकास करें। यदि हम ध्यान देकर सुने तो परमेश्वर की सृष्टि, आज्ञाकारिता और भरोसा रखने के संबंध में हमें बेशकीमती सबक सिखा सकती है। युगों से आकाश में अपनी राह पर भ्रमण करने वाले तारों से लेकर पृथ्वी के परमाणु कणों तक जिनके मार्ग का पता नहीं लगता, प्रकृति के सारे पदार्थ सृष्टिकर्ता की इच्छा का पालन करते हैं। और तारीफ की बात यह है कि परमेश्वर हर एक वस्तु और हर एक प्राणी की जिन्हें उसने सृजा है रक्षा करता है और पालन पोषण करता है। जो आकाश के असंख्य ग्रहों को तथा संसारों को संभालता है, वह उस छोटी भूरी गौरियों के चारे का भी ध्यान रखता है जो निडर होकर अपना गीत गाती है। जब मनुष्य अपने कड़े परिश्रम के लिए घर से निकलते हैं, जब वे प्रार्थना में लीन होते हैं, जब रात में वे सो जाते हैं और जब वे प्रातःकाल उठते हैं, या जब एक धनवान अपने महल में जीवनार का आनंद लेता है, अथवा एक गरीब व कंगाल मनुष्य अपने बच्चों को रोटी देता है, इनमें से प्रत्येक को स्वर्गीय पिता प्रेम भरी दृष्टि से देखता रहता है। कोई भी ऐसा आंसू नहीं जिसे स्वर्गीय पिता देखता ना हो, या ऐसी कोई भी मुस्कुराहट नहीं है जिस पर वह ध्यान नहीं देता है। यदि हम इन बातों के ऊपर केवल विश्वास करते तो हमारी व्यर्थ की सभी चिंताएं अपने आप ही मिट जाती। हमारे जीवन में उदासी निराशा के बादल नहीं रहते, क्योंकि हर एक बात, चाहे छोटी होती या बड़ी, हम उसे परमेश्वर के ही हाथों में सौंप देते, जो असंख्य चिंताओं से ना तो घबराता है और ना ही बड़े बोझ से उबता है। तब हमारी आत्मा को वह शांति मिलती जिससे बहुत से लोग अभी तक अनजान हैं। जब आपकी ज्ञान इंद्राएं इस पृथ्वी की सुंदरता पर आकर्षित व मुग्ध हो जाती हैं, तो जरा आने वाले उस संसार के विषय में सोचिए जिसमें पाप और मृत्यु का नाम और निशान तक नहीं होगा, जहां प्रकृति पर श्राप का कोई चिन्ह नजर नहीं आएगा। अपनी कल्पना में उधार पाए हुए लोगों के घरों के विषय में सोचिए, वह आपकी कल्पना के सुंदरतम और मनोहरतम चित्रों से भी अधिक महिमामय प्रतीत होगा। प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों में हमें प्रभु की महिमा की थोड़ी झलक तो मिलती है। पवित्र शास्त्र कहता है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। 1 कुरिन्थियों 2:9 में यह प्रतिज्ञा हम पाते हैं। कवि और प्रकृति विज्ञान के महारथी प्रकृति के विषय में बहुत कुछ कहते हैं, परंतु मसीही लोग ही हैं जो प्रकृति की सुंदरता के रस को बड़ी ही कृतज्ञता के साथ ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे अपने स्वर्गीय पिता के हाथ की कारीगरी को पहचानते हैं और उसके प्रेम को फूलों में, वृक्षों में और झाड़ियों में निहारते हैं। जो व्यक्ति पर्वत, तराई, नदी और समुद्र को मनुष्य के प्रति परमेश्वर के प्रेम के प्रगटीकरण के रूप में ग्रहण नहीं करता, वह व्यक्ति इन वस्तुओं के महत्व को अनुभव नहीं कर सकता। परमेश्वर अपने ईश्वरीय कार्यों के द्वारा तथा हृदय के ऊपर अपने आत्मा के प्रभाव द्वारा हमसे बातचीत करता है। यदि हमारा हृदय परमेश्वर द्वारा हमारे लिए प्रकट की गई महत्वपूर्ण बातों को पहचानने के लिए खुला हुआ है, तो हम अपनी परिस्थितियों तथा वातावरण और अपने आसपास होने वाले बदलावों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। भजनकार परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करते हुए यों कहता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है, भजन संहिता 33:5। एक और स्थान पर वह यह कहता है, जो बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा, भजन संहिता 107:43। परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। इस वचन में हम उसके चरित्र का अधिक स्पष्ट प्रकाशन, मनुष्यों के साथ व्यवहार करने की विधियों और मनुष्य के उद्धार की महान योजना का स्पष्ट वर्णन पाते हैं। इसी वचन में हमारे सामने हमारे प्राचीन पुरखाओं, नबियों तथा पवित्र जनों का इतिहास भी खुलता है। वे सब भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य थे, याकूब 5:17। वे लोग भी हमारे समान ही संघर्ष करते हुए अपने कार्यों में प्राय असफल हुए थे। वे भी हम लोगों के समान परीक्षा में पड़े, परंतु हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा विजय प्राप्त की। उन्हें सफल होते हुए देखकर हमें भी धार्मिकता की लड़ाई में प्रोत्साहन मिलता है। जब हम पढ़ते हैं कि उनके अनुभव कितने मूल्यवान हैं, उन्हें कितना प्रभावपूर्ण जीवन और जागृति मिली और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करके उन्होंने कैसे कैसे कल्याणकारी कार्य किए, जिस भावना ने उन्हें प्रेरित किया, वही भावना हमारे हृदयों में पवित्रता के लिए एक आग भड़काती है कि हम भी चरित्र में उनके समान बने और उन्हीं की तरफ परमेश्वर के साथ साथ चलें। यीशु ने धर्मशास्त्र के पुराने नियम के विषय में कहता है, और देखो ये बातें नए नियम के बारे में भी कितनी अधिक सच है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है, मेरे अर्थात उस उद्धारकर्ता की, जिसके ऊपर हमारे अनंत जीवन की आशा टिकी हुई है उसी की गवाही देता है यूहन्ना 5:39। हाँ, संपूर्ण बाइबल ही यीशु मसीह के विषय में वर्णन करती है, उत्पत्ति के पहले उल्लेख से, क्योंकि जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई, यूहन्ना 1:3। लेकर अंतिम वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, प्रकाशित वाक्य 22:12 तक हम उसके कार्यों का वर्णन पढ़ते हैं और उसी की वाणी सुनते हैं। यदि आप उद्धारकर्ता से परिचित होना चाहते हैं तो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें, अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भर लीजिए। पवित्र शास्त्र जीवन के जल के समान है जो आपकी तीव्र प्यास बुझाता है। यह तो स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी है। यीशु स्वयं घोषित करता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं, यूहन्ना 6:53। फिर वह इसकी व्याख्या इस प्रकार करता है, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, यूहन्ना 6:63। हमारे शरीर उन्हीं वस्तुओं से बनते हैं जिन्हें हम खाते या पीते हैं। जैसे प्राकृतिक क्षेत्र में यह बात ठीक है, वैसे ही आत्मिक क्षेत्र में भी लागू होती है। जिस बात का हम अध्ययन मनन चिंतन करेंगे उसी से हमारी आत्मिक शक्तियों का पोषण होगा। उद्धार की योजना एक ऐसा रोचक विषय है कि स्वर्गदूत भी उसे जानने की इच्छा रखते हैं। यह तो उद्धार पाए हुए लोगों के लिए युगों युगों तक विज्ञान व गीत बना रहेगा। तो क्या इस विषय पर विचार करना अथवा इसका अध्ययन करना उचित नहीं है? यीशु की असीम करुणा व प्रेम व बलिदान जो हमारे लिए दिया गया हमसे मांग करते हैं कि हम इस पर गंभीरता से सोच विचार करें। हमें अपने उद्धारकर्ता और मध्यस्थ के चरित्र के ऊपर ध्यान मनन करते रहना चाहिए। हमको उसके संदेश और उद्देश्य पर सोच विचार करना चाहिए जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए आया था। जब हम इन स्वर्गीय विषयों पर ध्यान करेंगे तो हमारा विश्वास और प्रेम सुदृढ़ होगा और हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने अधिक से अधिक ग्रहण योग्य बनती जाएंगी, क्योंकि उनमें विश्वास और प्रेम शामिल होगा। हमारी प्रार्थनाओं में समझदारी और उत्साह पाया जाएगा। प्रतिदिन के जीवन के अनुभव में उस यीशु की सामर्थ के ऊपर लगातार भरोसा बना रहेगा जो परमेश्वर के पास आने वालों का पूर्ण उद्धार कर सकता है। जब हम मुक्तिदाता के चरित्र की सिद्धता पर ध्यान करते हैं तो हमारी भी यही इच्छा होगी कि हम भी उसकी पवित्रता की छवि में पूर्ण रूप से बदल कर नए बनते जाएं। हम जिससे प्रेम करते हैं उसी की तरह बनने की हमारे दिल में भूख और प्यास होगी। जितना अधिक हमारे विचार मसीह के ऊपर केंद्रित होंगे उतना ही अधिक हम दूसरों से उसकी चर्चा करेंगे और संसार के ऊपर अपने प्रभु को प्रकट करेंगे। बाइबल केवल विद्वानों के लिए ही नहीं लिखी गई बल्कि यह सामान्य लोगों के लिए लिखी गई है। इसमें मुक्ति के लिए आवश्यक सच्चाइयों को दोपहर के प्रकाश की तरह स्पष्ट किया गया है। कोई भूल नहीं करेगा, कोई गलत राह पर नहीं भटकेगा, परंतु केवल वे लोग ही भटकेंगे जो स्पष्ट रूप से प्रकट किए गए मार्ग को छोड़कर अपने ही विचारों पर चलेंगे। किसी मनुष्य द्वारा की गई परमेश्वर के वचन की व्याख्या पर हमें अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए, किंतु अपने लिए पवित्र वचन का अध्ययन और मनन स्वयं करना चाहिए। यदि हम स्वयं सोचने के बजाय दूसरों के विचारों को स्वीकार कर लेंगे तो हमारी शक्ति कमजोर और हमारी योग्यताएं संकुचित हो जाएंगी। परमेश्वर के वचन के गुण अर्थों को समझने के लिए यदि हम ध्यान देने योग्य विषयों के ऊपर स्वयं ध्यान मनन नहीं करेंगे तो हमारे उत्तम मस्तिष्क की शक्तियां कभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकेंगी। दिमाग का विकास तब होगा जब उसे बाइबल के एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध खोजने तथा पवित्र शास्त्र के एक पद को उसी विषय से संबंधित दूसरे पद के साथ तुलना करने में और आध्यात्मिक बातों से तुलना करने में व्यस्त रखा जाए। बुद्धि को विकसित करने के लिए पवित्र शास्त्र के अध्ययन के अलावा कोई अन्य साधन इतना अधिक लाभदायक नहीं है। बाइबल की विस्तृत और सक्षम सच्चाइयों के अलावा कोई अन्य पुस्तक या ग्रंथ ऐसा शक्तिशाली नहीं है जो विचारों को उन्नत कर सके तथा दिमाग की शक्तियों को बलवंत बना सके। यदि परमेश्वर के वचन का यथोचित अध्ययन किया जाए तो मनुष्य का मस्तिष्क विकसित, चरित्र उत्तम, उद्देश्य ऐसे स्थिर व दृढ़ हो जाएंगे जैसे कि इस युग में प्राप्त करना शायद ही संभव हो। परंतु बाइबल को सरसरी नजर से पढ़ने से कुछ अधिक लाभ नहीं होगा। हो सकता है कि आप बाइबल को शुरू से लेकर अंत तक कई बार पढ़ ले, फिर भी आप इसकी सुंदरता को देखने से वंचित रह जाएं और इसके गुण और रहस्यमय अर्थ को ना समझ पाएं। बाइबल के एक भाग का तब तक अध्ययन करना जब तक इसका अर्थ समझ में ना आ जाए और उद्धार की योजना से उसका संबंध स्पष्ट ना हो जाए, इससे कहीं अधिक अच्छा है कि बिना किसी उद्देश्य के अनेक अध्याय पढ़ डालें जिसे कोई सकारात्मक मार्गदर्शन भी ना मिले। अपनी बाइबल हमेशा अपने साथ रखिए। जब भी आपको समय मिलता है इसे पढ़िए। इसके मुख्य पदों को अपनी याद में बैठा लीजिए। गलियों में टहलते समय भी आप एक वाक्य को पढ़कर उस पर चिंतन कर सकते हैं और इस प्रकार से मन में दृढ़ रूप से जमाया जा सकता है। जोशपूर्ण चिंतन, मनन तथा प्रार्थना के साथ बाइबल का अध्ययन किए बिना बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। पवित्र शास्त्र के कुछ भाग ऐसे हैं जिनका अर्थ आसानी से समझा जा सकता है, परंतु पवित्र शास्त्र के अनेक जगह ऐसा है जिसे समझना आसान नहीं है। उसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और उसके लिए प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा का अगुवाई और मदद मांगना है। पवित्र शास्त्र के एक पद की तुलना दूसरे पद से करें। सावधानी के साथ खोजबीन और प्रार्थना के साथ चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अध्ययन से बहुतायत के साथ लाभ प्राप्त होता है। जिस प्रकार खान खोदने वाले जमीन की सतह के नीचे छिपी हुई कीमती धातु को बड़ी लगन के साथ ढूंढते हैं, उसी प्रकार से जो लोग परिश्रम के साथ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से खोजबीन करते हैं मानो वे कोई गुप्त खजाना खोज रहे हैं, तो उन्हें अत्यंत महत्व के सत्य के ऐसे अनमोल खजाने प्राप्त होते हैं जो लापरवाही से बाइबल का अध्ययन करने वालों की नजरों से छिपे रहते हैं। जब प्रेरणा देने वाले वचनों पर हृदय में मनन किया जाता है तब यह जीवन जल की नदियों के समान साबित होगा। बाइबल का अध्ययन बिना प्रार्थना के कभी नहीं करना चाहिए। उसके पवित्र पन्नों को खोलने से पहले हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और हमें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दिया जाएगा। जब नथानियल यीशु के पास आया तो मुक्तिदाता ने कहा, देखो यह सचमुच इसराइली है, इसमें कपट नहीं है। नथानियल ने पूछा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। यूहन्ना 1:46-48 में हम पाते हैं। इसी तरह जब हम सत्य के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना के गुप्त स्थानों में प्रार्थना करेंगे उस समय यीशु हमें देखेंगे। जो लोग विनम्रता के साथ ईश्वरीय मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करेंगे प्रकाश के संसार के स्वर्गदूत उनके साथ रहेंगे। पवित्र आत्मा मुक्तिदाता का सम्मान करता तथा उसकी महिमा को प्रकट करता है। उसका काम है कि मसीह को, उसकी धार्मिकता की पवित्रता को और उस महान उद्धार को जो उसके द्वारा मिलता है प्रस्तुत करे। यीशु कहता है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यूहन्ना 16:14 में हम पाते हैं। केवल सत्य का आत्मा ही ईश्वरीय सच्चाई को अच्छी तरह से समझने के लिए प्रभावशाली तरीके से हमारी मदद कर सकता है। परमेश्वर मनुष्य जाति को कितना बहुमूल्य समझता है कि उसने अपने प्रिय पुत्र को उनकी खातिर मरने को भेज दिया और उसकी जगह अपने आत्मा को नियुक्त किया है कि मनुष्य को शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे उसका ज्ञान को बांटने के लिए और प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए देने के लिए और अपने पवित्र आत्मा को हमें देने के लिए कि वह हमें समझने के लिए मदद करेगा और परमेश्वर का प्रेम हम समझ सकते हैं, उसके महानता को हम जान सकते हैं कि वह हमें कितना हमारा ख्याल करता है। आइए हम उसके पास आए, उसके अच्छाइयों के लिए, उसके महानताओं के लिए उसे धन्यवाद दे और उसके विषय और सीखें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तुझे इन वचनों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने प्रकृति से हमें बहुत कुछ सिखाता है और पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, धर्मशास्त्र के द्वारा तू हमें तेरे प्रेम के विषय, तेरे महानता के विषय बहुत कुछ सिखाता है। हमें तेरा पवित्र आत्मा दे, तेरा पवित्र आत्मा का अगुवाई दे ताकि हम तेरे रास्ता में चल सके। मेरे साथ हो, मुझे आशीष दे और मेरे हर एक श्रोताओं को तू बहुत आय से आशीष दे। सबों को तेरे रास्ता में चला और सबों को तेरे राज्य में प्यार दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।